आयत नंबर 102। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। कितना हक़ का तो काती ही, जितना हक़ है उससे डरने का। और वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और न तुमको मौत आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। यहाँ से सबक का आगाज़ है। एक बार फिर ईमान वालों को पुकारा गया। कौन है ईमान वाले? मैं हूँ, हम नहीं, मैं। जब तक इसको हम मैं पे ना लेके आएंगे, बात नहीं समझ आएगी। क्योंकि जब तक कोई इंसान अपने आप को उस जगह पे लेके नहीं आता कि जहाँ पे अल्लाह ताला उसको लाना चाहता है, तो बात नहीं बनती। ईमान वालों को खिताब किया गया। किस बात का हुक्म दिया गया? इत्तकुल्ला, अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह से डरना क्या होता है? लफ्ज़ तकवा वाव काफ या से है। वक़ायतुन या वक़ा बचाने को भी कहते हैं और डरने को भी कहते हैं। जब इसको डरने के मानों में लेते हैं, तो मुराद है कि अल्लाह की नाफरमानी से डरो। और जब इसको बचाने के मानों में लेंगे, ख़ास तौर पे लफ्ज़ अल्लाह के साथ, तो मुराद क्या होगा कि अल्लाह की नाराज़गी से बचो। उन सारे कामों से बचो जो अल्लाह ताला को नाराज़ कर देगी। कितना डरो? हक का तो काती ही, जितना के हक है उससे डरने का, उससे डर, उसका खौफ रखने का। ये कितना है भाई? इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने फरमाया, हक का तो काती ही हुआ। हक के तकवा क्या है? वो ये है कि अय युताआ, कि उसकी एतात की जाए। फला युसा, और उसकी नाफरमानी ना की जाए। व युज़्करु, और उसका ज़िक्र किया जाए या उसको याद रखा जाए। फला युनसा, और उसको भूला ना जाए। व युश्करु, और उसका शुक्र अदा किया जाए। फला युकफर, और उसकी ना शुक्री ना की जाए। हक़े तकवा ये है कि अल्लाह की एतात हर काम में की जाए, कोई काम इताअत के ख़िलाफ़ ना हो। और इसको हमेशा याद रखें और कभी ना भूलें, और इसका शुक्र हमेशा अदा करें, कभी इसकी ना शुक्री ना करें। सोचिए कितने लोग हैं जो इस दर्जे पे पहुँचते हैं, कभी ना शुक्री ना करें, हमेशा इताअत करें, हमेशा याद रखें और कभी ना भूलें। ये है हक़ तकवा। एकदम तकवा की बात क्यों आ गई? पिछली आयतों के साथ रब्त है। हमने पिछली आयतों में अहले किताब और दूसरे लोगों की मुसलमानों को गुमराही में डालने की कोशिशों का तस्करा सुना। अब इन आयत में, यानी आयत 102 और 103, इन दो आयत में अल्लाह ताला मुसलमानों को वो काम बता रहे हैं कि जिनके इख्तियार करने से मुसलमान दुश्मनों की साजिशों से महफूज हो सकते हैं। मुसलमानों की कुव्वत जमेगी, वो नाकाबले तस्खीर बन जाएंगे। दो अहम असूल इसकी बुनियाद हैं। पहला तकवा, इत्तकुल्लाह, तकवा। कब तक तकवा? कितना तकवा? हक का तुकाती ही, जितना डरने का हक। वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, मौत तक। और किसी को नहीं पता कि किस लम्हे मौत आ जाए, इसलिए इससे मुराद के हर वक्त का डर। ये वो डर नहीं है जो कभी डरे तो कभी नहीं, रमज़ान में डरे और गैर रमज़ान में ना डरे, हज पे गए तो डरे और वापस आए तो ना डरे, उम्रे पे गए तो डरे और बाकी ना डरे, कोई आसमानी आफत आ गई तो डरे और जब उससे बच गए तो ना डरे। ये वो डर नहीं है, बल्कि हर वक्त का डर, हर वक्त अल्लाह ताला का खौफ बंदे के दिल पे रहे और वो उसके साथ अपने आप को जोड़े। और दूसरी चीज़ आयत 103 में आएगी कि वा तसिमू बिहब्लिल्लाह जमीया, एतसाम किसके साथ? हब्लिल्लाह के साथ। तो गोया कि यहाँ अल्लाह ताला ने जो बुनियादी असूल दे दिए दुश्मनों की साजिशों से बचने के लिए, क्या हैं? तकवा इख्तियार करो, इनफरादी ज़िंदगी में भी, इज्तमाई ज़िंदगी में भी। और दूसरी चीज़ बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद। اور بچنے کی بھی بات کی اس آیت میں ایک کیا کہ تفرقے بازی اور اختلافات سے بچ جاؤ. جو قوم یہ کر لے گی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دے گا. اس لیے ضرورت ہے ان آیات کو اچھی طرح سمجھنے کی. چونکہ بات ہوئی کہ تقویٰ جو ہے اصل میں بچنے اور اجتناب کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور ڈرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے, اور یہ دونوں چیزیں اصل میں ایک ہی چیز کے دو مختلف رنگ ہیں. کیسے؟ مثلا آپ دیکھیے کہ کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم سانپ سے بچو, تو کیا سانپ کا ڈر اس میں نہیں آئے گا؟ اب اس بات کو سمجھ لیں کہ تقویٰ جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے, تو ساتھ ہی ساتھ پھر تقویٰ گناہوں سے ڈرنے کا نام بھی ہے. تقویٰ کیا ہے کہ گناہوں سے صرف بچنا ہی نہیں, ان سے ڈرنا بھی ہے, خوف کھانا ہے. جیسے سانپ کے دھوکے میں رسی سے بھی انسان ڈرتا ہے, اسی طرح گناہ کے اندیشے میں مکروہات سے بھی ڈرنا ہے, شبے والی چیزوں سے بھی ڈرنا ہے. اور جب تک گناہوں کا ڈر پیدا نہیں ہوتا نا, آپ اس سے مکمل طور پہ نہیں بچ سکتے. صحیح بات ہے. ہم لوگوں کو یہ تو کہتے رہتے ہیں گناہوں سے بچو, گناہوں سے بچو, چھوڑ دو, لیکن گناہوں سے خوف نہیں سکھاتے. پیچھے ہم پڑھ چکے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ, کہ اس کی خطائیں اس کا خسار کر لیں گی, اس کا گھراؤ کر لیں گی. اس لیے گناہ کے لفظ کو سنتے ہی کسی کو جب تک گھن نہ آئے, اس سے خوف نہ آئے, اس سے اپنی جان کو بچا کر دور بھاگنے کا خیال پیدا نہ ہو, تو سمجھ لیں کہ ابھی اس کے اندر تقویٰ نہیں آیا. چلیے اپنا جائزہ لے لیتے ہیں. گناہوں کی بس پانچ چھ قسمیں لکھ لیں اپنے نوٹس میں اور پھر پوچھیں کیا میں ڈرتی ہوں. بچنے کی بات نہیں ہے, ڈرنے کی بات ہے. گناہوں سے بچنا اور بات ہے اور گناہوں سے ڈرنا اور بات ہے. بچے گا وہی جو گناہوں سے ڈرے گا, اور جب گناہوں کا ڈر دل میں آ جاتا ہے نا, تو پھر انسان اپنے آپ کو اس سے بچانے بھی لگتا ہے. اور پھر اس کے کئی درجے ہوتے ہیں. تقویٰ ایسی ہے جیسے ایک پودا ہے, چھوٹے سے بیج سے کومپل, کومپل سے ٹہنی, ٹہنی سے پھر تنا, پھر اس پہ پتے اور پھر پھل ہے. اسی طرح تقویٰ کا جو لفظ ہے نا, یہ مختلف درجوں میں پیدا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں نا, تو جو لفظ بچنے کا اور اجتناب کرنے کا آ رہا ہے, اس کو سامنے رکھیں تو سوال دل میں آتا ہے کون متقی ہے؟ کیا میں تقویٰ والی ہوں؟ متقی وہ جس میں تقویٰ ہے. کیا میرے میں تقویٰ ہے یا فلاں صاحب وہ متقی ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ صرف داڑھی کا ہونا تقویٰ کی دلیل نہیں ہے, کئی لوگوں کی استراری داڑھیاں بھی ہوتی ہیں. صرف سر پہ حجاب کا ہونا تقویٰ کی دلیل نہیں ہے, کیونکہ بعض حجاب صرف اوپر کے حجاب ہوتے ہیں یا زبردستی کے یا مجبوری کے ہوتے ہیں. اصل پتہ کیسے چلے کہ تقویٰ ہے کہ نہیں, کتنا ہے, تو اس کو سمجھ لیجئے کہ تقویٰ کے کچھ درجے ہوتے ہیں. پہلے درجے پہ تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان کفر اور شرک سے بچے, اس سے ڈرے بھی اور بچے. آج آپ نے دو لفظ رٹ کے جانے ہیں, بچنا اور ڈرنا, بچنا اور ڈرنا. میں نے گناہوں سے بچنا بھی ہے اور میں نے گناہوں سے ڈرنا بھی ہے. اور جس وقت آپ اپنے آپ کو اس چیز کا یقین دلا لیں گی نا, تو انشاءاللہ اصل کام ہو گیا. پہلا درجہ کیا ہوا؟ کہ آپ نے کفر اور شرک سے خود کو بچانا ہے. اگر اس معنی کو سامنے رکھیں گے نا, تو اس معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان متقی ہے, کیونکہ وہ کفر سے ڈر گیا اور بچ گیا. ٹھیک ہے, اگرچہ وہ گناہوں میں بھی مبتلا ہے. اس معنی کے لیے بھی قرآن پاک میں کئی جگہ لفظ متقین اور تقویٰ استعمال ہوا ہے. لیکن تقویٰ کا ایک اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے جو اصل میں مطلوب ہے, اور وہ کیا ہے؟ ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. ہر اس چیز سے بچنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں. یہ کہاں پتہ چلے گا بھائی؟ اللہ کی پسند آپ کو قرآن سے مل جائے گی. عموماً کچھ اللہ کی پسند کی چیزیں حدیثوں سے بھی ملتی ہیں. اور رسول کو کیا پسند نہیں؟ یہ آپ کو حدیث اور سیرت اور قرآن کی تفسیر میں مل جائیں گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی جو آپ سے پوچھی گئیں. یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے. اب جب اس پہ آتے ہیں نا تو لوگ سمجھیں کہ مڈل میں پہنچ گئے. کوشش کرتے ہیں کہ جو میں کرنے لگی ہوں اللہ اس سے ناراض ہوگا کہ خوش, رسول نے یہ کیا کہ نہیں, اچھا اگر آج میرے سامنے اللہ کے نبی ہوتے تو میں ان کے سامنے یہ کر سکتی تھی کہ نہیں. یہ مڈل کا درجہ ہوتا ہے. یہ ایک عام امتی کا درجہ ہے. پھر اس کے بھی کئی مختلف مقام ہوتے ہیں, لیکن عمومی بات یہ ہے کہ اس پہ پہنچنے کے بعد پھر انسان یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ نہ کرے, لیکن یہ ہو جاتا ہے کہ پھر اپنے ہی گناہ پہ خود کو ٹوکنے لگتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو گناہ کرنے کے بعد خیال آتا ہے کہ یہ گناہ تھا, یہ برا تھا, اس سے بچنا تھا, اس سے ڈرنا تھا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو گناہ کرنے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے. یہ کس چیز کا فرق ہے؟ یہ درجوں کا فرق ہے. پہلا جو درجہ تھا نا, کفر اور شرک سے بچنا, اس کو آپ لگا لیں جیسے بیج ہے. یہ جتنا خوبصورت ہوگا نا, یہ جتنا مضبوط ہوگا نا, اگلا درجہ بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا. کسی کو کسی برائی میں مبتلا دیکھ لیں, چھڑانا چاہتے ہیں, چھوڑنا چاہتے ہیں, کہاں کام کریں گے, یہ چھوڑ دو, وہ چھوڑ دو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, نہیں, واپس جائیے. اس کے دل میں توحید کو راسخ کر دیں, اللہ سے محبت, اللہ کی ناراضگی کا ڈر, کفر سے نفرت, شرک سے نفرت, توحید سے محبت, وحدانیت سے محبت. وہاں جا کے آپ اسکریو ٹائٹ کر دیں گے نا, پوری گاڑی ٹھیک ہو جائے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ گاڑی ساری ہلی ہوتی ہے, آپ کی کرسی ساری ہلی ہوئی ہے, لیکن اندر کا کوئی ایک مین سوئچ ڈھیلا ہوتا ہے. جن کا اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے نا, پھر اس کا اثر کبھی آپ کو نفس کی برائیوں سے دکھتا ہے, کبھی اخلاقی برائیوں سے دکھے گا, کبھی نفسانی خواہشات کے پیچھے وہ بندہ دوڑتا بھاگتا ہوا دکھے گا. تو ان کے پیچھے جانے والے کو اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ سارا کچھ ٹھیک کر لیں, جب تک وہ مین سکریو ٹائٹ نہیں کریں گے نا, وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. اس لیے لوگوں کو ان کی برائیوں پہ ڈائریکٹ ہٹ کر کے روکنا, یہ ناسمجھی کی بات ہے, یہ ان کو اپنے خلاف کھڑا کرنے والی بات ہے. پھر کہتے ہیں اب تو دیکھو گستاخ ہو گئی ہے, اب تو باغ سے بولتا ہے, پہلے تو گناہ کرتا تھا تو ذرا ڈرتا تھا, اب تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے ہٹ غلط جگہ کیا ہے. دیکھیے کہ آپ کبھی ہیمر کو سامنے لائیں, جو لوگ کیل ٹھوک رہے ہوتے ہیں, 19-20 کا فرق پڑ جائے نا اگر آپ کی ہتھوڑی کی ڈائریکشن میں, تو وہ جو کیل کے سرے کے اوپر ہتھوڑی لگنی تھی نا, وہ آپ کی انگلی کے اوپر لگے گی, چیخیں نکل جائیں گی. بس یہی بات ہے, جو کیل جہاں صحیح جگہ پہ لگنا تھا اس پہ ہیمر لگے گی تو چیز جم جائے گی, لیکن جب ہم اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر کرتے ہیں تو چیخیں نکل جاتی ہیں. کرنے کا کام میں تو سوچتی ہوں آج کے دور میں ایک ہی ہے, ساری فقہی کتابیں بند کر دیں. مثال دے رہی ہوں میں, ایک عملی بات نہیں کر رہی, سمجھنے کی بات ہے. اپنی زندگی کے اندر, اپنے بچوں میں, اپنے ڈیپینڈنٹس کے ساتھ, اپنے کولیگس کے ساتھ, اگر آپ ایک اچھا دیندار ماحول بنانا چاہتی ہیں نا, تو ڈونٹ ڈسکس اینی ادر تھنگ. کسی نان مسلم کو اگر آپ نے اسلام سکھانا ہے تو ڈونٹ ڈسکس اینی تھنگ ادر دین لا الہ الا اللہ. جب یہ جم گیا باقی خود ہی جم جائیں گے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گناہ کر بھی لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہاں کی ہے یہ کوئی گناہ, ساری دنیا کرتی ہے. لیکن جتنا تقوی اندر آتا ہے اتنا بندہ گناہ کرنے سے پہلے رک جاتا ہے. بجلی کا تار ہے نا, کھلا پڑا ہے, وہاں بچے بھی کھیل رہے ہیں اور بڑے بھی قریب ہیں, کیا بڑا شخص اس تار کے قریب جائے گا؟ یعنی ایک ایسا حال ہے کہ جس میں صرف بڑا بندہ بیٹھا ہے اور کھلے تار بھی پڑے ہیں بجلی کے, اور کوئی اکیلا کمرے میں کوئی دوسرا بڑا نہیں, وہاں بچہ بھی کھیل رہا ہے. آپ بتائیے کہ ایک بڑا شخص اس تار سے جیسے بچے گا, کیا بچہ بھی ویسے بچے گا؟ وہ تو جا کے پکڑ لے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں, وہ ڈرا ہی نہیں تو وہ بچے کیوں. ہم جن چیزوں سے ڈرتے ہیں نا پھر ہم ان سے بچتے ہیں. وہ ٹریفک کے رولز کو سارے دیکھ لیں آپ تو بھی آپ کو یہ رول مل جائے گا, اور عملی زندگی میں بھی. تو اس لیے انسان کے لیے جو چیز مطلوب ہے نا, کہ کرنٹ لگنے کے بعد بھی تو تار چھوڑا ہے نا, تو پہلے ہی نہ چھو. دیکھیے کھلی تار کو جو پکڑ لے گا نا تو شاید بچ جائے, شاید نہ بچے, देखा जाएगा वो झटका किस दर्जे का था, आपने जूता कौन सा पहनना हुआ था, आपके हाथ गीले तो नहीं थे, दिस एंड दैट। लेकिन गुनाहों का जब तार छू लिया जाता है ना, तो पहले दर्जे में तो वाकई वो भी धक्का देता है बंदे को। कुछ बिजलियाँ ऐसी होती हैं जो धक्का देती हैं। कई डिफरेंट मुल्कों में जाती रहती हूँ, तो उससे कई लोग मुझे बताते हैं कि यहाँ की बिजली जो है ना, ये धक्का नहीं देती, ये अपनी तरफ खींचती है। कुछ जगहों की बिजली ऐसी है कि खुदा ना खास ऐसी चीज़ को लग जाए तो वो धक्का देती है, लोग दूर जाके गिरते हैं, और ये भी रहमत होती है कि वो कहती पीछे हो जाओ। हाँ, इसी तरह इब्तदाई दर्जे में जब बंदा गुनाह को हाथ लगाता है ना, तो ये धक्का देता है। कहाँ से पड़ता है ये धक्का? व नफ्स लवामा, सूरत क़यामत में अल्लाह ताला कहते हैं कि नफ्स लवामा की कसम कि ये अंदर से मलामत करता है, किधर चल पड़े हो, ये तुम हो, ये तुम्हें सूट करती है बात, भाग जाओ इधर से, ये धक्का पड़ता है। लेकिन जो बंदा इस धक्के को भी बर्दाश्त कर जाए और के चुप करो तुम कौन होते हो रोकने वाले, तो वह माँ उभर रियो नफ्स इन नफ्स अम्मारा तुम बिस्सु, फिर उसके बाद वो गुनाहों की जो करंट है ना, वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, जो अपनी तरफ खींचती है। पहले एक हाथ से पकड़ा था, अब दो से पकड़ेंगे। पहले थोड़ी देर के लिए पकड़ा था, पकड़ के दिखाते हैं, वो चीख रहे होते हैं। बिल्कुल तसव्वुर में लाएं कि जिसको बिजली का हल्का हल्का करंट भी लग रहा है, लेकिन वो अनाह के मारे पकड़ा है, देखो मुझे तो कुछ नहीं कह रहा, देखो मुझे कुछ नहीं होता, नहीं मेरा दिल बड़ा नेक है, मुझे इन बुराइयों से कुछ नहीं होता, मैं इस बुरे माहौल में भी मुतमईन हूँ। वो अंदर से चीख रहा है, अंदर पड़ी हुई है करंट, अंदर गुदगुदी भी हो रही है, जो भी हो सकता है, लेकिन वो ऊपर से ही हंस के दिखा रहा है कि मैं खुश हूँ। ये हाल हर उस बंदे का है जो फन के नाम पे, ग्लैमर के नाम पे, खुशी के नाम पे गुनाह कर रहा है, और लोग उसको तड़पता देख के कह रहे हैं इसको मज़ा बढ़ा रहा है, असल में अंदर बिजली के करंट लग रहे होते हैं। मैं कभी किसी को राह चलते तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनते देखो ना, कभी आपने भी फील किया होगा, आप बैठे होते हैं पास, ज़ोर से गाड़ी गुजरती है, पूरी गाड़ी हिल रही होती है, इतना उसमें म्यूज़िक है, अंदर भी है, तो लोग सोचते हैं हाय कितना फास्ट म्यूज़िक है। मुझे क्या फील होता है, जो मेरी पर्सनल फीलिंग है, गलत भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है ये अपने अंदर का गुस्सा या अपने अंदर का जो ग्रज है या खौफ है या अंदर की जो तकलीफ़ है ना, उसको दबाने के लिए इसको ऊंची आवाज़ से सुन रहे हैं। पूरा ईमान है इस बात पर कि गुनाह की महफिल से इंसान खुशी से उठ ही नहीं सकता अगर उसके दिल में तकवा मौजूद है। बैठ सकता है, उसको बुला सकता है, कोई चला जाएगा, गुजर रहा होगा, लेकिन वो वहाँ से खुश नहीं आएगा, उसकी कैफियत उसको महसूस होगी। और तकवा की ये कैफियत फिर इंसान को गुनाह से बचने की तरफ माइल करती है। हम ये कहते हैं ना, मुत्तकी वो हैं जो तकवा वाले हो गए, गुनाह छोड़ चुके, वो तो कोई भी नहीं है, क्योंकि वो अगला दर्जा नबियों का है। इंसानों का, उम्मतियों का तकवा क्या है कि इस बात की फिक्र का लग जाना कि मैं गुनाहगार हूँ। जिसको ये लग गया, समझे कि वो दूसरी सीढ़ी पे पहुंच चुका है। तीसरा दर्जा होता है एक तकवा का, और वो क्या है कि जिसमें इंसान अपने दिल को हर गैर अल्लाह से बचाता है और अपने दिल को हर वक्त अल्लाह की याद में रखने की कोशिश करता है, उसकी जिंदगी का मुंतहा रब की रजा बन जाती है कि मेरा रब राजी, मेरा अल्लाह मुझसे खुश, वो नाराज़ ना हो, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, वो क्या सोचता है। यानी वो बंदा फिर नाफरमानी का ख्याल ही नहीं दिल में ला सकता। आम इंसान तो गुनाह कर लेता है या नहीं करता, ख्याल ले आता है ना, लेकिन ये दर्जा जो होता है ना, इसमें इंसान गुनाह के ख्याल से भी गुनाहगार हो जाता है, और ये दर्जा होता है ये अंबिया कराम का होता है। क्या देखा हमने? पहला दर्जा हर ईमान वाला, जिसने शिर्क और कुफर से बचा लिया खुद को। दूसरा दर्जा है कोशिश करके बेहतर से बेहतर होने वालों का दर्जा। हर उस चीज़ को मुझे नहीं रखना, पकड़ो ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। कभी आप देखा करें, जो बड़ी अच्छी बीवियाँ होती हैं ना, वो अपने घर से हर वो चीज़ निकालती हैं जो उनके शौहर को नहीं पसंद, अपनी आदत में से एक एक चीज़ निकाल देते हैं जो घर वालों को नहीं पसंद। इस तरह जब अल्लाह से मोहब्बत हो तो इंसान अपने अंदर वो कोई चीज़ रख ही नहीं सकता जो उसके अल्लाह को नहीं पसंद। और नतीजा क्या हुआ कि वो फिर एक वक्त आता है कैसा बन जाता है कि अल्लाह भी ऊपर मुस्कुराता होगा कि देखो इसको क्या हो गया। हमारी जुबान में कहते ना, ये चल्ली हो गई है, ये बावला हो गया, ये दीवाना हो गया। एक हदीस में आता है कि तुम अल्लाह का इतना जिक्र करो कि लोग तुम्हें रियाकार समझें। मुराइयन का कुछ लफ्ज आता है, रिया से, यानी तुम्हें लोग दीवाना कहने लगे तुम इतना जिक्र करो। और यकीन करें, जब अल्लाह से आपका ताल्लुक जुड़ेगा ना, तो सिर्फ नेकी करते हुए आपको अल्लाह नहीं याद आएगा, गुनाह करते हुए भी आएगा। जो छत पर गिरेगी मेरे सर पे गिर जाएगी, मैं किस शक्ल से अल्लाह के सामने जाऊंगा, मैं अल्लाह को कौन सी शक्ल दिखाऊंगा। यानी तकवा का बेहतरीन दर्जा क्या है कि गुनाह करते हुए भी बंदे को मज़ा ना आए, बल्कि रब भी याद आए कि वो मुझे इधर से भी देख रहा है उधर से भी देख रहा है। जैसे आप लोगों से छुपते छुपाते हुए अगर कोई गलत काम कर रहे हो तो साथ साथ देख रहे होते हैं कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें तकवा के इस दर्जे पे पहुंचा दे जो उम्मतियों में से बेहतरीन तकवा का दर्जा हो, कि पहली बात गुनाह करने से पहले ही हमें उससे डर आने लगे और हम उससे बचने लगें, और गुनाह के ख्याल को हम हवा ना दें। फिर आगे दूसरी बात आती है हक का तुकाती, फिर हक अदा होगा तकवा का। फिर इंसान इस मामले में फिर अगला मरहला क्या आता है कि अल्लाह के मामले में किसी की मलामत और बुराई की परवाही ना करें, हमेशा इंसाफ पे कायम रहे। और इस इंसाफ का चाहे नुकसान उसके नफ्स को पड़े, उसकी माँ को पड़े, उसके घर वालों को पड़े, औलाद को पड़े, करता ही रहे। इसी तरह हक़ तकवा की एक और तारीफ भी की जाती है कि कोई इंसान उस वक़्त तक तकवा का हक अदा नहीं कर सकता जब तक कि वह अपनी ज़ुबान को महफूज ना करे। अल्लाह अकबर। और इस आयत का सहाबा कराम पे क्या असर हुआ था उसको देखेंगे। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम जो थे वो घबरा गए कि इत्तकुल्लाह हक का तुकाती ही का हुक्म है, हालांकि हम तो अल्लाह ताला से उतना ही डर सकते हैं जितना कि हमारी इस्तेतात है। इस पर फिर वो आयत नाजिल हुई थी फत्तकुल्लाह मस्ततातुम। हम लोग इन बातों को सुन लेते हैं लेकिन इसके बाद हमारे अंदर उस तरीके से डर या खौफ पैदा नहीं होता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे ईमान में और सहाबे कराम के ईमान में एक बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका कि वो जो बात सुनते थे उसको अपने लिए समझते थे, हम जो बात सुनते हैं उसको दूसरों के लिए समझते हैं, और साथ ही साथ हम जो बात सुनते हैं उसको नसीहत से ज़्यादा बरकत और इस नीयत से सुनते हैं कि चलें इसके पढ़ने से हमें इतना सवाब हो जाएगा। तो खुलासा क्या है कि लोगों अल्लाह से उतना डरो जितना तुम डर सको, और जितना तुम डर सकते हो अगर उतना डर जाओगे उसके बाद अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाता है, कोई ज़्यादती हो जाती है तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ फरमा देगा। और कब तक डरो? पहले क्या कहा कितना डरो, अब बताया जा रहा है कब तक डरो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, फर्मा बरदारी की हालत में तुम्हें मौत आए। अब एक इंसान जो है उसको ये तो नहीं पता कि मुझे मौत कब आएगी, तो लिहाजा हर वक्त जिस तरह मौत के लिए तैयार रहते हो इसी तरह हर वक्त अल्लाह से डरते रहो। एक ईमान वाले की ज़िंदगी में कोई एक लम्हा भी ऐसा अगर आ जाए कि जो अल्लाह के डर के ख़िलाफ़ हो तो उस ज़िंदगी से फिर मौत अच्छी। इससे क्या पता चलता है कि एक इंसान जो काम ज़िंदगी भर करता है उम्मीद की जाती है कि उसी पर उसको मौत आएगी। एक रिवायत में आता है कि कमा तो ह्यूना तमूतूना, जैसे तुम जियोगे वैसे ही मरोगे, व कमा तमूतूना तुख्शरून, और जिस तरह तुम्हें मौत आएगी उसी हालत में आखिरत में खड़े किए जाओगे। तो अल्लाह ताला हमें इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि तुम्हें सारी ज़िंदगी अल्लाह के आगे झुकने की कोशिश करनी चाहिए, हर लम्हे इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि कोई नाफरमानी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी की नेकियां आखिर के बुरे अमल से ज़ाया हो जाएं, क्योंकि रिवायात में ये चीज़ भी पता चलती है।